अरमान की आफत। राजवीर की कठोर आवाज अभी भी अबीर के कानों में गूंज रही थी, लेकिन अबीर ने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, वो बिना हार माने यहां से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब आगे वहीं दूसरी ओर संजना सिंह के पास कोई रास्ता नहीं था, और वो सीधा कहीं और नहीं बल्कि राजवीर जिंदल के ठिकाने यानी के उसके न्यू डाक विला में जा पहुंची थी, और वहां पर उसका सामना सीधे सम्राट ठाकुर से होता है। सम्राट संजना को केवल नजर भर के देखता है, उसके बाद वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी नजरें फेर लेता है। हालांकि उसे संजना पसंद भी आई थी और वो उसके साथ भी थोड़ा टाइम पास करना चाहता था, लेकिन सम्राट ने तो कसम खा रखी थी कि जब तक वो आस्था के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा, तब तक उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आएगी। वो अपना सारा ध्यान आस्था को ढूंढने में लगा रहा था और बेसब्री से उसके मिलने के इंतजार में था। जब उसे पता चला कि वो ऑलरेडी इंडिया में है, तो वो राजवीर जिंदल को उकसाकर इंडिया लेकर आ गया, और यहां आकर राजवीर और सम्राट ने मिलकर अपना साम्राज्य पूरी तरह से स्थापित कर दिया था। अबीर सिंह राठौर को बर्बाद करने के साथ साथ उन्होंने मिलकर धीरे धीरे आकाश, सुमित और ध्रुव, आहान सबकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स पर नजर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो दोनों मिलकर अरमान को फाइनेंशियली और इमोशनली चारों तरफ से तोड़ देना चाहते थे, और अरमान को इस बात की भनक तक नहीं लगने देना चाहते थे। अरमान को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद राजवीर जिंदल उसकी यादें उसे लौटाना चाहता था, लेकिन उस वक्त जब आस्था की जान अरमान के हाथों से जाएगी। वैसे भी राजवीर जिंदल का सोचना था कि अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला शख्स की जान अगर हम गलती से ले लेते हैं तो उसका दर्द कुछ ज्यादा ही गहरा होता है। फिर उस टूटे हुए इंसान को मौत की सजा देने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसकी जिंदगी ही उसकी सजा बन जाएगी। आज संजना और अरमान के इंटीमेट मोमेंट के बाद अरमान को भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी बीवी आस्था इस हादसे से जरूर टूट जाएगी। राजवीर यही सब सोच सोचकर मन ही मन मुस्कुराया। अब जैसे ही संजना अचानक वहां आई तो राजवीर उसे फाड़ खाने वाली नजरों से घूरते हुए देखने लगा था। अगले ही पल संजना को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके शरीर में बह रहा खून अचानक जम गया हो। अचानक उसे अपने आसपास ठंड का एहसास होने लगा था। अपने तेज धड़कते दिल को संभालते हुए वो घबराहट और गुस्से के साथ बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बॉस, पता नहीं आस्था को अरमान के मेरे साथ होने की खबर कैसे मिली। वो अपनी पूरी टीम के साथ अरमान को बचाने के लिए सीधा वहां आ धमकी। तभी अचानक सम्राट उठा और आगे बढ़कर उसने संजना के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके गाल को ध्यान से इधर उधर करके देखने लगा, जहां पर आस्था की उंगलियों के निशान साफ साफ मौजूद थे। अब संजना के गालों पर छपे हुए निशानों की रंगत को देखकर सम्राट खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और वो ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगा। सम्राट की हंसी पूरे के पूरे डार्क मेंशन में गूंजने लगी थी। वहीं संजना को इस वक्त सम्राट पर बहुत गुस्सा आ रहा था, वो उसे घूर रही थी। वो अपनी गुस्से की सारी आग सम्राट पर उगलने वाली थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो दिल ही दिल में सम्राट को कोसने लगी थी। तभी सम्राट ने हंसते हंसते संजना का खिल्ली उड़ाते हुए कहा, वैसे मानना पड़ेगा मिस संजना, आप तो एकदम जंगली बिल्ली बनकर वहां गई थीं। हमें तो लगा था कि आज शायद अरमान सिंघानिया की इज्जत पूरी तरह से लूट जाएगी, लेकिन ये क्या, आप तो उसे वहां छोड़कर भींगी बिल्ली तरह भाग आईं। जैसे ही सम्राट ने उसका मजाक उड़ाया तो वैसे ही संजना ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए थे और वो उसे उंगली दिखाते हुए फट पड़ी, जस्ट शट अप, अपनी फालतू की बकवास बंद करो। तभी राजवीर ने अपने सर पर 2 से 3 बार टैप करना शुरू कर दिया था। वो ठीक उसी तरह से अपने सर पर टैप कर रहा था जिस तरह से अरमान अक्सर अपने सर पर टैप किया करता था। राजवीर को इस तरह से अपने सर पर टैप करते हुए देखकर सम्राट एकदम शांत हो गया था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका गुरु इस वक्त कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में डूबा हुआ है। तभी राजवीर अचानक कुछ सोचते हुए तमतमाता है, मैंने अच्छी तरह से सारी सिचुएशन पता करवाई थी कि सबके सब उस समय हॉस्पिटल में बिजी थे, तो फिर अरमान के बारे में खबर रखने का वक्त उन्हें कैसे मिला? जरूर कुछ तो ऐसा है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। तभी रॉकी बीच में बोल पड़ा था, लेकिन बॉस पूरा का पूरा परिवार हॉस्पिटल से घर जाने के बाद सिंघानिया मेंशन के अंदर ही था, मैंने उस वक्त खुद कंफर्म किया था, तो फिर अरमान सिंघानिया के पीछे कौन आया था? तभी सबका दिमाग जोर से चल रहा था, लेकिन अचानक राजवीर के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई और वो एकदम से बोला, अबीर सिंह राठौर। लगता है अबीर सिंह राठौर ने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मैंने उसे कहा भी था कि अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरी नजरों से कहीं दूर चला जाए, लेकिन शायद उसने मेरी बातों को हल्के में लिया है, और हो सकता है कि अबीर सिंह राठौर ने ही हमारा प्लान फ्लॉप किया हो। लगता है कि अबीर सिंह राठौर का इस दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, इसीलिए तैयारी करो। इतना बोलकर राजवीर उन्हें गुर्राते हुए अपने कमरे में चला जाता है, जहां जाकर वो एक बार फिर अपनी बनाई हुई बीवी के साथ इंटीमेट होने लगता है। राजवीर के वहां से जाने के बाद सम्राट संजना के चारों ओर चक्कर लगाते हुए तंज भरी मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर उसे छेड़ता है।
वैसे मिस संजना, अगर आपको एक और मौका मिलेगा तो क्या वाकई आप अरमान की इज्जत लूट लेंगी? अब जैसे ही सम्राट ने मजाकिया लहजे में ये सवाल पूछा तो संजना बुरी तरह से झल्लाई, पर कुछ कहा नहीं। वो वहां से उल्टे पांव लौट गई और अगले ही पल वो मन ही मन परेशान होकर सोच रही थी कि कहीं मैंने इन लोगों के साथ हाथ मिलाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि यही लोग हैं जो अरमान को हासिल करने में मेरी मदद कर सकते हैं, वरना अरमान सिंघानिया तो मेरी पहुंच से पूरी तरह से बाहर है। हालांकि संजना के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पिता ने गैर कानूनी धंधा करके ही नहीं बल्कि ड्रग्स की खेती करके भी कितने सारे पैसे इकट्ठा किए थे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था। इसके बाद उसने अपनी बेटी संजना के लिए शहर में अच्छा खासा बंगला भी खरीद रखा था। लेकिन संजना के पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी वो अब तक अपने पिता को जेल से नहीं छुड़ा पाई थी, क्योंकि उसे जेल में डालने वाला कोई आम इंसान नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया था। अरमान सिंघानिया की इजाजत के बिना कोई भी उसके पिता को जेल से नहीं छुड़ा सकता था। संजना केवल महीने में एक बार ही अपने पिता से मिलने के लिए जाया करती थी और अब वो दिन कल ही आने वाला था। फिलहाल संजना ने अपना मन बना लिया था कि चाहे कुछ भी करना पड़े, सबसे पहले वो आस्था को अरमान की जिंदगी से बाहर करेगी। और अगर एक बार अरमान को इस बात का यकीन हो जाता है कि आस्था सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके पीछे पड़ी है, तो बहुत जल्द वो उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगी। फिर संजना के लिए अरमान की जिंदगी में एंट्री करना आसान हो जाएगा। इसी सोच के साथ एक गहरी सांस लेते हुए रात के अंधेरे में वो अपने बंगले में जा पहुंची थी। वहीं सम्राट रॉकी को तिरछी नजरों से घूर रहा था, क्योंकि वो दोनों इस वक्त राजवीर के कमरे से आती हुई मधोशी भरी आवाजें साफ सुन पा रहे थे जो उस पूरे डाक विला में गूंज रही थी, जिसे सुनकर सम्राट का मन बेचैन हो गया था। तब सम्राट ने इरिटेट होकर एकदम से रॉकी से पूछा, वो लड़की मुझे कब मिलेगी? आखिरकार तो उस लड़की को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा है? इंडिया में हमें आए हुए पूरे 15 दिन से ज्यादा होने वाले हैं। भले ही हमने अभी तक ये बात ऑफिशियल अनाउंस नहीं की है, लेकिन तू तो जानता है कि मेरा यहाँ आने का मकसद एक ही है, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। सम्राट लगभग अपना आपा खोने के कगार पर पहुंच चुका था,
क्योंकि सम्राट ने कसम खा रखी थी कि जब तक वो आस्था के साथ मौज मस्ती नहीं करेगा, तब तक उसके अलावा वो किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने देगा। उसने मन ही मन तय कर लिया था, सबसे पहले वो आस्था के साथ फुल एंजॉय करेगा, उसके बाद वो किसी और लड़की के साथ खेलेगा। इसी सोच के साथ वो अब सिर्फ और सिर्फ आस्था के मिलने के इंतजार में था। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ना तो उसे आस्था का नाम पता था और ना ही उसके पूरी डिटेल्स। वहीं दूसरी ओर अब इस काली रात के बाद अगली सुबह हो चुकी थी। इस वक्त आस्था और अरमान एक दूसरे को बाहों में भरकर सोए हुए थे। अचानक आस्था की पलकें फड़फड़ाने लगी और वो धीरे धीरे नींद से जागने लगी। कितने ही दिनों के बाद आस्था अपने पति के स्पर्श में आई थी तो उसके चेहरे पर कुछ अलग सा सुकून नजर आ रहा था। भले ही उसके पति ने नशे की हालत में उसके साथ प्यार किया हो, लेकिन अपने पति के प्यार का एहसास उसे इस वक्त काफी हद तक संतुष्टि दे रहा था। अचानक अरमान को देखते देखते आस्था के मन में एक बात आई कि इससे पहले कि अरमान उठे, उसे सबसे पहले यहां से उठकर अपने कमरे में चले जाना चाहिए, वरना जागने के बाद अरमान उससे कितने सारे अजीब से सवाल करने लगेगा। लेकिन तभी अचानक आस्था के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और जैसे ही उसने देखा कि अरमान किसी भी पल उठने वाला है, तो वैसे ही आस्था ने जल्दबाजी में उठकर सबसे पहले अपने उल्टे सीधे कपड़े पहने और फिर वो फटाफट अरमान के बिल्कुल बराबर में बैठ गए और अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। उसने कमरे में छाई हुई खामोशी को तोड़ने की पहल की थी। अरमान जो गहरी नींद में सोया हुआ था, अचानक आस्था के रोने की आवाज़ सुनकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया। हालांकि अरमान का चेहरा एकदम से हड़बड़ा गया, लेकिन उसने चीखने से खुद को रोका। वो एकदम से उठकर बैठ गया और जैसे ही उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और आस्था भी अजीब सी हालत में उसके पास बैठी हुई रो रही है, तो उसका पारा एकदम से चढ़ गया। वो तुरंत अपने आप को कवर करता हुआ चिल्लाने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या हो रहा है यहाँ? और तुम इतनी बुरी तरह से क्यों रो रही हो? और तुम ऐसी बेढंगी हालत में इस तरह से मेरे पास आकर क्यों बैठी हुई हो? बोलो, जवाब दो। हालांकि ये बात उसने लड़खड़ाती जुबान में कही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर रूखापन और चिड़चिड़ापन साफ छलक रहा था। अब जैसे ही अरमान ने सख्त अंदाज में ये पूछा, तो आस्था और जोर जोर से रो पड़ी और रोते हुए अरमान से बोली,
हो आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैंने आपको कितना रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? मैं अभी दादाजी के पास जा रही हूँ और मैं उनको आपका सारा सच बता दूंगी और अपनी नानी माँ से भी आपकी शिकायत करूंगी। देखिए आपने मेरा क्या हाल बना दिया है।
ये बोलकर आस्था ने अपने नेक और अपने शरीर के कुछ हिस्से अरमान को दिखाने शुरू कर दिए थे, जहाँ पर अरमान के प्यार की निशानियाँ मौजूद थीं, जिसे देखकर अरमान को आश्चर्य हुआ और अगले ही पल वो पूरी तरह से हैरानी में पड़ गया था। वो इरिटेट होकर सोचने लगा, आखिर ये लड़की क्या बकवास कर रही है? उसका चेहरा पूरी तरह से उलझन में था और अचानक अरमान ने अविश्वास से सिर हिलाते हुए आस्था को डांटना शुरू किया, तुम झूठ कह रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर तुम ही मेरे बेड पर आई होगी, तुम्ही ने मुझे अपने साथ इस तरह की हरकत करने के लिए मजबूर किया होगा। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से तरह जानता हूँ, तुम जैसी लड़कियाँ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब जैसे अरमान ने एक बार फिर अपने पहले वाले अंदाज के कठोरता से जवाब दिया, तो वैसे ही आस्था ने तंग आकर तुरंत अपने सिर पर हाथ मार लिया और अरमान पर बरस पड़ी। अब इसका फैसला तो दादाजी करेंगे, मैं जा रही हूँ दादाजी से सारी बातें कहने के लिए और अब आपको सबके सामने जवाब देना ही होगा। ये बोलकर आस्था उठ खड़ी हुई और जल्दी से दरवाजे की ओर जाने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक जा पाती, उससे पहले ही अरमान जैसे तैसे भागते हुए ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था, जिसे देखकर आस्था के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि अरमान मरते दम तक भी उसकी इंटीमेट वाली बातें दादाजी या किसी के भी सामने नहीं आने देगा। अरमान ने तुरंत दांत भींचकर आस्था के कंधों को पकड़ा और उसकी ओर घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रही हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब जरूर तुम्हारा कोई खेल है। इस पर आस्था ने अरमान की आंखों में आंखें डालते हुए बिल्कुल बेखौफ होकर कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ आप मेरी बातों पर रत्ती भर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है, आपके नशे की अवस्था के बारे में कल रात ध्रुव जी ने मुझे बहुत कुछ बताया था। आप अपने भाई ध्रुव पर तो यकीन करते हैं ना, आप जाकर उनसे ये बात पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं जानती हूँ सारी गलती आपकी है, आप ही ने मुझे फ्रेम किया है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये बोलकर आस्था फिर से अरमान पर ब्लेम करने लगी थी। आस्था मुंह के अपने बारे ऐसी बातें सुनते ही अरमान की आंखों का रंग बदलने लगा, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था।